आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने 2025 के चुनाव से पहले अपनी सरकार की मजबूत पहल के तहत सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल चाइल्ड केयर के लिए $1 अरब की योजना का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी की ऐतिहासिक चुनाव पूर्व घोषणा में $1 बिलियन का प्रारंभिक शिक्षा कोष शामिल है, जिसका उद्देश्य सेवाओं का निर्माण और विस्तार करना है। उन्होंने सरकार की चाइल्ड केयर सब्सिडी के विस्तार की भी घोषणा की है, जिसमें पूर्व की गतिविधि परीक्षण प्रणाली यानी एक्टिविटी टेस्ट को हटाकर 3 दिनों की गारंटी प्रदान की गई है। इस विस्तार से अगले 5 वर्षों में $427 मिलियन का खर्च अनुमानित है। स्नैक एक ऐसा संगठन है जो अबोरिजिनल आइलैंडर बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इसने इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि एक्टिविटी टेस्ट को हटाने से प्रथम राष्ट्र बच्चों के जीवन परिणामों में अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर सिडनी के यहूदी समुदाय ने वुलारा उपनगर में हाल ही में हुई इसराइल विरोधी तोड़फोड़ की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। ये इलाका सिडनी के पूर्वी हिस्से में है और यहाँ कई सिनागॉग और यहूदी संस्थाएं स्थित हैं। आपातकालीन सेवाओं ने सिडनी के पूर्वी हिस्से में एक वाहन में आग लगने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी और पाया कि उस वाहन और एक अन्य वाहन के साथ साथ 2 इमारतों और एक फुटपाथ पर इसराइल विरोधी नारे लिखे गए थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस 2 संदिग्धों की तलाश में घर घर जाकर पूछताछ कर रही है, जिन पर इस घटना को अंजाम देने का शक है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने इस घटना को यहूदी विरोधी कृत्य करार दिया है। ये घटना शुक्रवार 6 दिसंबर को मेलबर्न में एक सिनागॉग पर आगजनी के बाद हुई है। ग्रीन्स नेता एडम बैंच ने भी सिडनी और मेलबर्न में यहूदी क्षेत्रों में हाल के हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य अस्वीकार्य हैं और मध्य पूर्व में हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने की मांग करने वाले लोग खुद हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। वहीं शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने पीटर डटन के उस बयान को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वे अबोरिजिनल या टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर ध्वजों के सामने खड़े नहीं होंगे। ये बयान उस समय आया है जब विपक्ष नेता डटन की टिप्पणी की आलोचना प्रमुख आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता पैट एंडरसन ने की है, जिन्होंने इसे अत्यधिक निराशाजनक, परेशान करने वाला और उकसाने वाला करार दिया है। जेसन क्लेयर ने एबीसी न्यूज ब्रेकफास्ट को बताया कि विपक्ष नेता अपने टूटे हुए वादों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने 48 घंटों में सीरिया पर 480 बार हमले किए और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जबकि सीरियाई विद्रोही बलों के नेता शांति और स्थिरता के लिए अपील कर रहे हैं। अहमद अल-शरा विपक्षी बलों के कमांडर, जिन्होंने दमिश्क पर कब्जा किया और राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस भागने पर मजबूर कर दिया, कहते हैं कि देश एक और संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सीरियाई शरणार्थी अपने देश का पुनर्निर्माण करने की उम्मीद में बड़े पैमाने पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन सीरिया के पड़ोसी इस अराजकता का फायदा उठा रहे हैं। इजरायली बलों का कहना है कि उन्होंने 2 दिनों में लगभग 500 बार सीरिया पर हमला किया और सीरियाई सैन्य सुविधाओं और नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया। साथ ही दक्षिण में आक्रमण कर रही जमीनी सेनाओं को समर्थन भी दिया। संयुक्त राष्ट्र के सीरिया में विशेष दूत गियर पेडरसन का कहना है कि इसराइल को इस हमले को रोकना चाहिए। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत ने सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार को अपदस्थ किए जाने के 2 दिन बाद मंगलवार को वहां से 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा स्थिति के आंकलन के बाद दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों ने निकासी की समन्वित प्रक्रिया की। कल देर रात इस बयान को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं, जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं, जहां वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उनका कहना था कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे। सरकार स्थिति पर निकटता से नजर बनाए रखेगी। इसी के साथ 11 दिसंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। डीजे वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।